परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोता, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम में से रोमियो नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको काफी जानकारी प्राप्त हो रही है। इस पुस्तक के लेखक हैं संत पौलुस। श्रोताओं, इस पुस्तक के अंतर्गत विशेष रूप से विश्वास, आदर्श मसीह जीवन और मसीह कर्तव्य पर जोर दिया गया है, साथ ही छुटकारा यानी कि हमें पापों से किस प्रकार मुक्ति प्राप्त हो सकती है इस विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
सुमिरन कर मन यीशु नाम, पूरे करता सब अरमान। सुमिरन कर मन यीशु नाम, पूरे करता सब अरमान। हो यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा नाम। 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 सुमिरन कर मन यीशु नाम, पूरे करता सब अरमान। सुमिरन कर मन यीशु नाम, पूरे करता सब अरमान।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका प्रभु यीशु के नाम में इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और विशेष करके उन मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों रोमियो की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने अध्याय 9 से अपने अध्ययन को आरंभ किया था और जिसमें हमने कुछ मुख्य बातों को देखना आरंभ किया। हम देख रहे थे कि इसराइलियों की पहचान के 8 लक्षण थे, जिसमें हमने 5 लक्षणों को देखा, जिसमें पहला चुनाव, दूसरा महिमा, तीसरा वाचा, चौथा व्यवस्था और पांचवा परमेश्वर की सेवा था। मेरे प्रियो, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और जैसे कि मैंने कहा था कि हम पिछले अध्ययन में इसराइल को पहचानने के 8 लक्षण को देख रहे थे और उसमें हमने 5 को देख लिया था। आज हम देखेंगे छठवां लक्षण। छठवां है प्रतिज्ञाएं। पुराना नियम इसराइलियों के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से पूर्ण है। परमेश्वर ने यहोशू से कहा था, यहोशू 1 अध्याय उसके 2 पद में, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इसराइलियों को देता हूँ। इसराइल के वंशजों को उस देश पर अधिकार करना था और हम जानते हैं कि वह देश उनको दिया गया। आज वह देश गुलाब की नाई खिल रहा है, परंतु उसका अधिकांश भाग आज भी उजाड़ पड़ा है। जब प्रभु यीशु आएगा तब वह देश फिर से एक मनोरम स्थान बन जाएगा। वह देश कभी मेरा नहीं था और न ही कभी मेरा होगा। वह देश केवल यहूदियों को दिया गया था। मित्रों, आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जो 7वीं लक्षण है वो है पूर्वज। यह मुख्यतः अब्राहम, इसहाक और याकूब हैं। और अंतिम और 8वीं लक्षण है यीशु मसीह। पहले तो वह इस पृथ्वी पर देह धारण करके आया था, वह भी यहूदी था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 9 पद में, कुएं पर उस सामरी स्त्री ने उसे यहूदी कहा था। दूसरा कुंतियों की पत्री 5 अध्याय उसके 16 पद में पौलुस सावधानी पूर्वक कहता है कि हम अब उसे देह में नहीं जानते हैं, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। मेरे मित्रों, पौलुस यीशु को परमेश्वर कहता है और पौलुस के लिए वह ईश मानव है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी महिमा देखी, ऐसी महिमा जो परमेश्वर के एकलौते की है, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण। मसीह इसराइल राष्ट्र में एक शिशु रूप में आया और कुएं पर उस सामरी स्त्री ने उसे यहूदी कहा था। मेरे विचार में वह आज के विद्वानों से अधिक ज्ञान रखती थी। मेरे मित्रों, संभवतः मसीह के लक्षण में अन्य 7 लक्षणों से अलग रखना चाहिए, क्योंकि वह अन्य सबसे कहीं अधिक महान है। इब्रानियों के पत्र 2 में लिखा है कि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। जी हाँ, हम देखते हैं इसराइल की पहचान। इसराइल तो अन्य समयों में पहचाना गया था, परंतु अब हम उसे पौलुस के युग में और अपने युग में भी पहचानेंगे। तो आइए आप मेरे साथ निकालिए रोमियों की पत्री 9:6। रोमियों की पत्री 9:6 लिखा है, परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इसराइल के वंश हैं वे सब इसराइली नहीं। मेरे मित्रों, यह बड़ी विचित्र अभिव्यक्ति है। दूसरे शब्दों में संपूर्ण संतति इसराइल की प्राकृतिक संतति ही वास्तविक इसराइल नहीं है। पौलुस के युग में यहूदियों ने एक प्रश्न पूछा कि यहूदियों ने पूरे मन से मसीह को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनका राष्ट्र तो चुना हुआ था। क्या यह परमेश्वर की चूक नहीं थी? 3 के आरंभ में पौलुस ने इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया था। अब पौलुस याकूब की प्राकृतिक संतति और आत्मिक संतति में अंतर दिखाएगा। बचे हुए लोग हमेशा ही रहे हैं और वे बचे हुए लोग चाहे प्राकृतिक और अप्राकृतिक आत्मिक संतति हैं। इसराइल राष्ट्र में यह अंतर है जिनमें वह अन्य जातियों को नहीं गिन रहा है। मेरे मित्र, यहाँ परमेश्वर से नहीं मनुष्यों से चूक हुई है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं शर्त रहित थी। हम रोमियो के पत्र 9:7 में पढ़ते हैं, और न इब्राहिम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है कि इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। मित्रों, इस पद पर ध्यान दीजिए कि यह पद पौलुस के विरोधियों के विवाद के लिए एक विनाशक प्रहार थी। यदि वंश केवल प्राकृतिक जन पर निर्भर था, तब इस्माइल वंशी, मिद्यानी, एदोम वंशी भी वंश में गिने जाएंगे। कई वर्ष पूर्व यरीहो में एक अरब व्यक्ति ने मेरे एक मित्र से कहा, मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि मैं अब्राहम का वंशज हूं, और वह उसकी बात काट नहीं पाया। वह अब्राहम का वंशज था, ये सब अब्राहम की संतान थे। अब्राहम के प्राकृतिक वंशज होना इस बात का प्रमाण नहीं था कि कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा की संतान हो। आपको स्मरण होगा कि यहूदियों ने एक बार प्रभु यीशु से कहा था कि वे अब्राहम की संतान है, तो यीशु ने उनसे कहा था कि यदि वे अब्राहम की संतान हैं, तो वे अब्राहम कैसे काम करेंगे। तब यीशु ने आगे कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:44 में, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ ही से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। मेरे प्रियो, हम रोमियो 9:8 में आगे पढ़ते हैं, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। ध्यान दीजिए, प्रेरित पौलुस इसराइल राष्ट्र में चुने हुए और न चुने हुओं में अंतर स्पष्ट करता है। शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं है, प्रतिज्ञा की संतान वंश में गिनी जाती हैं। प्रेरितों के काम 21:20 में डॉक्टर लुका कहते हैं, उन्होंने यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की, फिर उससे कहा, हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है और व्यवस्था के लिए धुन लगाए हैं। इसराइल में हजारों यहूदियों ने मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद उस पर विश्वास किया था। वे चुने हुए थे और पौलुस ने उन्हें सदैव इसराइल कहा था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जब प्रभु कलीसियाओं से बात करता है, तब वह उनसे कहता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय उसके 9 पद और 3 अध्याय के 9 पद में, जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं पर शैतान की सभा हैं। हम रोमियो 9 अध्याय उसके 9 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है कि मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। मेरे मित्रों, प्रतिज्ञा की संतान वे नहीं जिन्होंने किसी बात पर विश्वास किया। इसहाक ने जन्म लेने से पूर्व विश्वास नहीं किया था। इसहाक प्रतिज्ञा की संतान था, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की और पूरी भी की। अब हम कुछ गंभीर बातों को देखेंगे। रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, और केवल यही नहीं परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी। ईश्वरीय चुनाव के सिद्धांत के लिए इसहाक और रिबका उदाहरण के लिए संदर्भित किए गए हैं। हम रोमियो के पत्र 9 अध्याय उसकी 11 पद में पढ़ते हैं, और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था कि उसने कहा कि जेठा छुटके का दास होगा। मेरे प्रियो, यह पद सर्वोच्च महत्व का है, परमेश्वर द्वारा इसराइल को स्वीकार न करने के कारण दिए जा सकते हैं, परंतु इसहाक और रिबका की संतान के संबंध में यह संभव नहीं है। ये दोनों लड़के तो जुड़वा बच्चे थे। परमेश्वर ने पहले को अस्वीकार करके दूसरे को स्वीकार किया। परमेश्वर ने जब याकूब का चुनाव किया था तब ना तो याकूब ने कुछ अच्छा किया था और न एसाव ने कोई बुरा किया था। अतः चुनाव न तो जन्म पर आधारित था, क्योंकि वे जुड़वा थे, और न ही उनके गुणों पर और न ही उनके कर्मों पर। मेरे मित्रों, पौलुस परमेश्वर के चुनाव को पूर्ण रूप से परमेश्वर के उद्देश्य पर आधारित करता है। वह अपनी बात की पुष्टि में आगे कहता है कि चुनाव कर्मों पर नहीं परंतु बुलाने वाले परमेश्वर पर आधारित है। तथापि इस पद में बुलाहट उद्धार के निमित्त नहीं थी। हम रोमियो के पत्र 9 अध्याय उसके 12 पद में पढ़ते हैं, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले पर बने रहे। मेरे मित्रों, यह उत्पत्ति 25 अध्याय के 23 पद का संदर्भ है, जो इन बालकों के जन्म से पूर्व का है। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख में से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और 1 राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा छोटे के अधीन होगा। तब हम आगे पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसके 13 पद में, जैसा लिखा है कि मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। यह संदर्भ पुराने नियम की अंतिम पुस्तक मलाकी से है। 1 अध्याय उसके 2 और 3 पद में यह वचन तब तक नहीं कहा गया था जब तक इन दोनों पुरुषों ने अपना जीवन जी लिया था और उनसे 2 राष्ट्रों की उत्पत्ति हो गई थी, जो लगभग 2000 वर्ष बाद की बात है। तब तक तो इतिहास बन चुका था। एक बार डॉक्टर ग्रिफिथ थॉमस से किसी विद्यार्थी ने कहा कि उसको समझ नहीं आता कि परमेश्वर एसाव से क्यों अलगाव रखता था। डॉक्टर थॉमस ने उत्तर दिया, मुझे भी इस गद्यांश में समस्या होती है, परंतु मेरी समस्या अलग है। मैं यह समझ नहीं पाता हूँ कि परमेश्वर याकूब से क्यों लगाव रखता था। यह एक बड़ी समस्या है। मेरे मित्रों, एसाव के प्रति परमेश्वर के अलगाव को समझना तो आसान है, क्योंकि वह असामाजिक था, ईश्वर रहित था, घमंडी था, और उससे ऐसा राष्ट्र उत्पन्न हुआ जो परमेश्वर से रहित जीवन जीना चाहता था, और उसने परमेश्वर की ओर पीठ की। मैं यह तो समझ सकता हूँ कि परमेश्वर ने एसाव को क्यों त्याग दिया, परंतु यह समझ में नहीं आता है कि उसने याकूब को क्यों चुना। बाइबल में लिखा है कि यह उसकी दिव्य इच्छा थी कि उसने ऐसा चुनाव किया। इसराइल का चुनाव परमेश्वर की दिव्य इच्छा थी। जी हाँ, आइए हम पढ़े रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसके 14 पद। सो हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं। मित्रों, यहाँ पर लिखा है, इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? इसका उत्तर गूंजता हुआ नहीं है। प्राकृतिक मनुष्य परमेश्वर की प्रभुता का विरोधी है। यदि परमेश्वर का चुनाव छोड़ दिया जाए तो मनुष्य उसे अन्याय कहता है। क्यों? हम मनुष्यों द्वारा लिए गए हानिकारक निर्णयों के विरोध कुछ नहीं कहते, परंतु परमेश्वर के निर्णयों पर हम उंगली उठाते हैं। मेरे मित्रों, यद्यपि हम परमेश्वर के मन को समझ नहीं पाते हैं, हम उसके न्याय पर तो भरोसा कर सकते हैं। हम चुनाव के सिद्धांत को अनदेखा नहीं कर सकते, न ही हम परमेश्वर के दिव्य चुनाव का मानवीय इच्छा से मेल करा सकते हैं। दोनों बातें सच हैं। हम सदा स्मरण रखें कि यह उसकी सृष्टि है, वही परम प्रधान है। मैं और आप इस पृथ्वी पर एक छोटे से जीव हैं। वह अगले ही पल मेरी सांस बंद कर सकता है। क्या मुझ में ऐसा साहस हो सकता है कि अपने पैरों पर खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालूं और उसके काम पर उंगली उठाऊं? यह तो सबसे बुरा विद्रोह होगा। मैं अपने सृजनहार और मुक्तिदाता को दंडवत करता हूं और जानता हूं कि उसका चुनाव ही सही है। यदि आपको उसका काम पसंद नहीं, तो आप उसकी सृष्टि से बाहर हो जाएं और अपनी सृष्टि स्वयं रचें कि आप अपने इच्छा से नियम बना सकें। आप जब तक परमेश्वर की सृष्टि में वास करते हैं, तब तक तो आपको उसी के नियमों का पालन करना होगा। जी हाँ, इस अकिंचन प्राणी को अपनी अकड़ी हुई गर्दन और घमंडी घुटने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सम्मुख टेक कर कहना होगा, उसमें अधर्म नहीं। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 7:18 में इसे पाते हैं। तब हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 9:15 में लिखा है, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। मेरे प्रियो, आपको स्मरण होगा कि मूसा परमेश्वर की महिमा देखना चाहता था। अतः परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे अपनी महिमा इसलिए नहीं दिखाऊंगा कि तू मूसा है। मूसा एक मानवीय पुरुष था। वह इसराइल के वंशजों को जंगल से लेकर चल रहा था। परमेश्वर ने उसे कहा कि वह जिस पर चाहे तरस खा सकता है, और वह मूसा पर इसलिए अनुग्रहकारी होगा कि वह परमेश्वर है, इसलिए नहीं कि मूसा एक माननीय जन है या व्यक्ति है। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने मेरा उद्धार क्यों किया? क्योंकि वह परमेश्वर है, इसलिए नहीं कि मैं कामिल हूं। उसने चुनाव किया और मैं उसे दंडवत करता हूं। हम रोमियो के पत्र 9:16 में पढ़ते हैं, सो यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की दया मानवीय इच्छा के कारण नहीं है, न ही वह मनुष्य के कर्मों का प्रतिफल है। मानवीय इच्छा और मानवीय कर्म परमेश्वर के कार्यों के प्रेरक नहीं है। मनुष्य सोचता है कि उसके निर्णय और उसके प्रयास परमेश्वर को उस पर अनुग्रहकारी बनाते हैं। स्टीफलर स्पष्ट कहते हैं, इच्छा और कार्य अनुग्रह पाने के लक्षण है, परंतु उसे उत्पन्न करने के कारक नहीं है। परमेश्वर दया दिखाता है केवल इसीलिए कि वह परमेश्वर है। मेरे मित्रों, हम उससे पूछने वाले कौन होते हैं? आज मैं उसे नमन करता हूं क्योंकि वह मेरा प्रभु है। रोमियो की पत्री 9:17-18 में लिखा हुआ है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया कि मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। सो वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर कहता है कि उसने फिरौन को साधन बनाया, परंतु आप कहेंगे वह चुना हुआ तो नहीं था? जी नहीं, वह निश्चय ही चुना हुआ नहीं था। परमेश्वर ने उसे जो अवसर दिए थे उस पर ध्यान दीजिए। फिरौन कहता है, मैं फिरौन हूं और यहां मेरी इच्छा चलती है, मैं इब्रानियों को जाने नहीं दूंगा। परमेश्वर कहता है, तू सोचता है कि तू उन्हें जाने नहीं देगा, परंतु तू उन्हें स्वयं भेजेगा। परमेश्वर की इच्छा सर्वपरि ही होगी। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को कठोर कर दिया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने उसे निर्णय लेने पर बाध्य किया। परमेश्वर ने उसे मन की इच्छा पूरी करने पर बाध्य किया। नरक में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने वहां जाने का निर्णय स्वयं न लिया हो। मेरे मित्रों, आप ही हैं जो अपना निर्णय स्वयं लेते हैं, आप पर कोई दबाव नहीं डालता है। रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसके 19 पद में हम पढ़ते हैं, सो तू मुझसे कहेगा वह फिर क्यों दोष लगाता है, कौन उसकी इच्छा का सामना करता है। मेरे मित्रों, यह सांसारिक मनुष्य का तर्क है। यदि परमेश्वर ने फिरौन का मन कठोर कर दिया था तो उसने फिरौन को दोषी क्यों ठहराया? क्या वह परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा था? रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसके 20 पद में हम आगे पढ़ते हैं, हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? मेरे मित्रों, मानवीय तर्क समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल केवल परमेश्वर की प्रभुता के विभव और मर्म में पाया जाता है। विश्वास उसे वहीं छोड़कर दीनता पूर्वक आज्ञा मानता है। अविश्वास विद्रोह करता है, उस परमेश्वर के क्रोध एवं दंड के अधीन रहता है जिससे वह प्रश्न करता है। जॉन पीटर लांगे ने बड़ी अच्छी बात कही है, जब मनुष्य स्वयं को ईश्वर बनाने के लिए निकल पड़ता है जिसे वह अपने अधिकारों में बांध देता है, तब परमेश्वर अपने वैभव को संवार कर अपनी वास्तविकता स्वतंत्र परमेश्वर प्रकट करता है, अर्थात प्रकट होता है, जिसके सामने मनुष्य कुछ नहीं, जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी। पौलुस भी ऐसे ही था जब वह परमेश्वर का वक्ता होकर फरीसी प्रवृत्ति के विरुद्ध विवाद करता था। यही कारण है कि वह सत्य का एक ही पक्ष प्रकट करता है। मेरे प्रियो, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि परमेश्वर परमेश्वर ही है और अकिंचन मनुष्य उसे बदल नहीं सकता। मित्रों, अगले कुछ पदों में पौलुस कुम्हार और मिट्टी का उदाहरण हमें देता है। परमेश्वर कुम्हार है और हम मिट्टी हैं। परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को बनाया और परमेश्वर ने बंदर से आरंभ नहीं किया था, या तो मनुष्य ही है जिसने स्वयं को बंदर बना दिया है। परमेश्वर ने तो उसे मिट्टी से बनाया था। भजन संहिता 103 उसके 14 पद में लिखा है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। हम प्रायः इस सच्चाई को भूल जाते हैं। किसी ने कहा है कि जब मिट्टी चिपक जाती है तो वह गारा बन जाती है। अब्राहम ने अपने वचन द्वारा परमेश्वर के समक्ष यथा उचित स्थान प्राप्त किया जब उसने कहा, उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय उसके 27 पद में, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की है कि तुझसे बातें करूं। तब हम रोमियो के पत्री 9 अध्याय के 21 पद को पढ़ते हैं, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए, तो इसमें कौन सी अचंभे की बात है? ध्यान दीजिए, परमेश्वर मानवता की उस मिट्टी से कुछ मिट्टी लेकर मूसा की रचना करता है। उसने फिर उसी मिट्टी से लेकर फिरौन की रचना की। आरंभ में तो वह मिट्टी कुरूप, अनाकर्षक, दृष्टिहीन और पापी थी। उसकी दया पात्र को सम्मान के लिए तैयार करती है, अर्थात सम्मान के काम के निमित्त। यह कुम्हार का अधिकार भी है कि वह दूसरा पात्र अपमान या साधारण उपयोग के लिए भी बनाए। रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसके 22 से 24 पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपने सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के वर्तनों की, जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरे से सही, और दया के वर्तनों पर, जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर, जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। मेरे मित्रों, पौलुस इस तथ्य को स्थापित कर चुका है कि परमेश्वर अपनी प्रभुता के मर्म और महिमा में काम करने के लिए स्वतंत्र है। अब पौलुस यह कहता है कि परमेश्वर दया और धीरे से काम करता है। क्रोध के पात्रों के साथ भी उसका स्वभाव ऐसा ही है। परमेश्वर ने उन्हें विनाश के योग्य नहीं समझा, जबकि मिट्टी का पाप और विद्रोह ने उन्हें दंड के लिए तैयार किया हुआ था। यदि परमेश्वर उन्हें तत्कालिक दंड भी देता तो अनुचित नहीं ठहरता, परंतु उसने इन पात्रों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं की जैसे कि वे निर्जीव मिट्टी हों, परंतु उन्हें स्वतंत्र इच्छा के प्राणी समझा। उसने उन्हें बहुत अवसर दिए कि वे परमेश्वर की आज्ञा मानने की कोई तो इच्छा प्रकट करें। यद्यपि परमेश्वर पाप से घृणा करता है और अंततः उसका दंड देना उसके लिए आवश्यक है, उसकी दया उन तक पहुंचती ही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि क्रोध के पात्र इसराइल राष्ट्र है जो सन 70 में नष्ट किया गया था। आपको स्मरण होगा कि यीशु ने इस विनाश की भविष्यवाणी की थी, परंतु उसने यरूशलेम के लिए रोकर प्रार्थना भी की। लुका रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 34 पद में हम देखते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर। सन 70 के विनाश में भी उसने कुछ भक्तों को बचा रखा था, ये दया के पात्र हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है और इसलिए बनाया है कि हम दया के पात्र बने। वह चाहता है कि हर एक पात्र उसकी निकटता में रहे और उसके लिए प्रयोग में आए, लेकिन हम में से कई उसकी बातों को सुनना नहीं चाहते हैं, उसके अनुसार चलना नहीं चाहते हैं। आज परमेश्वर मुझे और आपको इस वचन के द्वारा सिखाना चाहता है कि हम उसके निकटता में आ जाएं, क्योंकि वह अपनी महिमा मेरे जीवन से और आपके जीवन से लेना चाहता है। वह आपको नाश होते हुए देखना नहीं चाहता। मेरे प्रियो, आज आप निर्णय ले कि आप क्या करना चाहते हैं। क्या आप परमेश्वर के हाथ का बर्तन बनना चाहते हैं या नाश होना चाहते हैं? आज के इस अध्ययन में आप अवश्य निर्णय लें। प्रभु आप सबको इस अध्ययन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मैं जब तेरी शरण में आया, तुझको मन से है अपनाया, मैं जब तेरी शरण में आया, तुझको मन से है अपनाया, तू ही बचाए मेरे प्राण, तू ही बचाए मेरे प्राण। यीशु नाम भजल तू मन रे, उसका सुमिरन तू कर ले रे। यीशु नाम भजल तू मन रे, उसका सुमिरन तू कर ले। यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, ओ यीशु नाम प्यारा नाम, ओ यीशु नाम प्यारा नाम, ओ यीशु नाम प्यारा सुमिरन कर मन यीशु नाम, पूरे करता सब अरमान। सुमिरन कर मन यीशु नाम, पूरे करता सब अरमान।
हो।